मैं हूं सुचि और स्वागत है आपका काव्य रचना कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं वार्ता पे। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक थी। वो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार लड़की का जन्म हुआ था, अतः इन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए इनका नाम महादेवी रखा गया। महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा था, जो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे, और उनकी मां का नाम श्रीमती हेमा रानी देवी था, जो साधारण कवयित्री होते हुए भी धर्म पारायण, कर्मनिष्ठ एवं भावुक महिला थी। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल में प्रारंभ हुई, साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। बीच में उनका विवाह होने के कारण कुछ समय के लिए उनकी पढ़ाई भी रोक दी गई। उन दिनों के प्रचलन के अनुसार महादेवी वर्मा का विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था, परंतु महादेवी जी को संसारिकता से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो तो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थी और स्वयं भी एक बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी। विवाह के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। महादेवी वर्मा की शादी 9 साल की उम्र में डॉक्टर स्वरूप नरेन वर्मा के साथ इंदौर में हुई। शादी के कुछ समय बाद महादेवी जी ने क्रॉसवेथ कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में ही रहने लगी। सन 1921 ईस्वी में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की थी। वो 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1924 तक, जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, तब तक वो एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। महादेवी वर्मा ने अपने प्रयत्नों से इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इसके वो प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रही। महादेवी वर्मा पाठशाला में हिंदी अध्यापक से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति भी करने लगी। फिर तत्कालीन खड़ी बोली की कविता से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रोला और हरि गीतिका छंदों में काव्य लिखना प्रारंभ किया। उसी समय माँ से सुनी एक करुण कथा को लेकर 100 छंदों में एक खंड काव्य भी लिख डाला। सन 1932 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। प्रयाग में अध्यापन कार्य से जुड़ने के बाद हिंदी के प्रति गहरा लगाव रखने के कारण महादेवी वर्मा दिनों दिन साहित्य क्रियाकलापों से जुड़ती चली गई। उन्होंने न केवल चांद का संपादन किया, बल्कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की। उन्होंने साहित्यकार मासिक का संपादन किया और रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना भी की। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सन 1952 में वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य चुनी गई। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इला चंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। सन 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी और सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया। महादेवी जी की खड़ी बोली का प्रथम संग्रह निहार है। निहार नामक रचना में 47 गीत हैं, जिनमें विसर्जन, मिलन, आंसू, स्वप्न, प्रतीक्षा और जो तुम आ जाते एक बार प्रमुख गीत हैं। इस रचना के गीत महादेवी जी ने सन 1928 से 31 के बीच लिखे थे। जिसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। इसमें 35 गीत संकलित हैं, जिसमें रश्मि, दुख, अतृप्ति और जीवन दीप प्रमुख गीत हैं। नीरजा नामक संग्रह में 58 गीतों का संकलन है। इसमें गीतों का अलग अलग नाम नहीं दिया गया है। सांध गीत नामक संग्रह में 45 गीत संकलित हैं। महादेवी जी ने बंगाल से संबंधित भंग भूषत वंदना नामक कविता भी लिखी थी। इसी प्रकार चीन के आक्रमण के प्रतिवाद में हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन भी महादेवी वर्मा ने किया था। आधुनिक हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाली महादेवी वर्मा जी ने अपना जीवन एक सन्यासी की तरह व्यतीत किया था। 11 सितंबर 1987 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया था। दोस्तों, ये है काव्य रचना कार्यक्रम, जिसे आप सुन रहे थे वार्ता पे, और ये है ग्लिट्स डिजिटल प्रोडक्शन।